ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बाबा के अनमोल रत्नों का आपके अपने ही घर में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सबके समक्ष अपने परम आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी विराजमान है, जो कि बाबा के नूरे रतन और मम्मा बाबा की साकार पालना लिए हुए हम सबको अपने अनुभव युक्त बोल सुनाएंगे। सभी अपने आशा दीदी जी को तो जानते ही होंगे, जो कि वर्तमान समय ORC के डायरेक्टर हैं। दीदी जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रशासन प्रभाग के चेयरपर्सन, कुशल वक्ता और विशेष टीचर ट्रेनिंग कराते हैं। दीदी जी हम सबके अंदर आशाओं के दीप जगाते हुए यही कहते हैं कि बेहतर से बेहतर कल की तलाश करो, बेहतर से बेहतर कल की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो हम सब ऐसे अपने परम आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते हैं और उनके अनमोल रतन सुनते हैं।
ओम शांति, ठंडी ठंडी ओम शांति। अच्छी तरह से बोलिए ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे उड़ रहे हैं, क्योंकि एक समय होता था जब पूछा जाता था कि आप कैसे चल रहे हैं, फिर समय आया कि आप कैसे दौड़ रहे हैं, आप अपने साथी से ज्यादा आगे हैं, क्लास वालों से ज्यादा आगे हैं, अच्छी दौड़ लगा रहे हैं। फिर एक वह समय आया जब हम कहते हैं दौड़ना ही नहीं लेकिन तेजी से दौड़ना, और आजकल समय है एक दूसरे से हम पूछते हैं आपकी उड़ान कैसी है, क्योंकि अब उड़ने का समय है। उड़ो और उड़ाओ। उड़ कौन सकता है? जो बिल्कुल लाइट, अगर थोड़ा भी भारीपन है तो उड़ना संभव नहीं होता। वो ऊंट पक्षी की तरह बन जाता है, पक्षी को कहो कि आप ये बोझ उठाओ, तो कहेगा कि मैं तो पक्षी हूं। और अगर उसको कहो कि अच्छा उड़ान भरो, तो मैं कैसे उड़ान भरूं, मेरा इतना भारी शरीर है। देखा है ना ऊंट पक्षी, देखा है? जिन्होंने नहीं देखा वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, ऊंट पक्षी जिसको कहते हैं शुतुरमुर्ख, अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्ट्रिच। अभी पिछले हफ्ते ही हम कहीं से गुजर रहे थे तो हमने देखे बहुत सारे ऊंट पक्षी थे, बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन दोनों बातें हैं उसमें। तो अगर हम उड़ान नहीं भर पाते, उड़ते नहीं, तो जरूर हमारे मन में, बुद्धि में बोझ। अगर हल्कापन होता तो अच्छी उड़ान भर सकते थे। तो अपन से हमने पूछना है, कहीं ऐसे बोझ मेरे सिर पर तो नहीं है जो मैं उड़ान का अनुभव नहीं कर पा रही हूं। मौसम उड़ने का और हम धरती पर ही रहे, मौसम उड़ने का है और हम धरती पर ही हैं, तो रेस में तो नहीं आए ना, उड़ान की रेस में तो नहीं आए ना। धरती पे रह गए, और उड़ने में भी फायदा तब होता है जब हम सब इकट्ठे उड़ते हैं। क्योंकि एक पंछी अगर अकेला उड़ता है ना, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और अगर कई पंछियों के साथ उड़ता है तो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो आसानी से उड़ लेता है। उसका कारण है, मैं सुनाऊंगी। रिसर्च बताती है कि अगर पंछी जो आकाश में उड़ रहे हैं, आपने गौर किया होगा, वो वी शेप में उड़ते हैं। देखा आपने पंछियों को, माताएं चिड़ियों को आकाश में उड़ते देखा, कैसे उड़ती हैं? वी शेप में उड़ती हैं। और जब वो उड़ती है ना, सब इकट्ठे पंख लगाती हैं, तो नतीजा ये होता है जब सब लोग इकट्ठे पंख लगा रहे हैं ना, तो ऐसी एनर्जी पैदा हो जाती है, ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है जो मेहनत नहीं करनी पड़ती। अंग्रेजी में उसको सिनर्जी कहते हैं। 30% 30% कम मेहनत करनी पड़ती है उड़ने में, ये साइंस बताती है, रिसर्च बताती है। तो हम अपन को देखें, जब कोई पहला पहला काम करता है तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमें याद है दिल्ली में पहला पहला मेला किया गया रामलीला ग्राउंड में 1973 में। उस समय हमारे पास भाई भी नहीं थे ज्यादा, हम लोग जाके हथौड़ी और कील लेकर के ठोक देते हैं, स्टॉल तैयार करते थे। लेकिन वो मेला इतना बड़ा था और इतना सुंदर था, जो उस मेले जैसा आज दिन तक दूसरा कोई मेला नहीं हुआ है। बैठे हैं दिल्ली वाले रमेश भाई, याद है? इतना अच्छा वो मेला था, लेकिन मेहनत लगी थी। आज मेला हम दो दिन में खड़ा कर लेते हैं, उन दिनों मेला खड़ा करने में हमें एक महीना लगा था, मेहनत लगी थी। उसके बाद कितना सरल हो गया सबके लिए, कितना सरल हो गया। क्लास में बहन जी कोई बात कहती है, जो व्यक्ति पहला पान का बीड़ा उठाता है उसे थोड़ा अधिक उमंग, उत्साह, दृढ़ता रखने की जरूरत होती है। लेकिन उसको देख करके अनेकों जब तैयार हो जाते हैं तो लगती है मेहनत, नहीं लगती है। सब हाथ बटाते हैं खुशी से, उमंग से, उत्साह से, आसानी से हो जाता है। ऐसे ही बाबा अब हमको जब उड़ने को कह रहे हैं, उड़ो, तो हम बैठे रहे, चलते रहे, इंतजार करें, तो हम मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे। हमारी मंजिल क्या है? मंजिल क्या है हमारी, बोलो? मंजिल क्या है, बोलो? हाँ बोलो। सत्युग में जाना, लक्ष्मी नारायण बनना, वैकुंठ में जाना। हमारी मंजिल वैकुंठ में जाना नहीं है, हमारी मंजिल वैकुंठ में ऊंच पद की प्राप्ति करना। दोनों में अंतर है। वैकुंठ चले गए, क्या बड़ी बात कर ली? वैकुंठ में तो प्रजा भी होगी, दास दासियां भी होंगे, प्रजा के नौकर चाकर भी होंगे, वो भी तो वैकुंठ में ही होंगे। हमने बनना है, ये हमने बनना है, बनना है प्रजा के नौकर चाकर, बोलो। आवाज नहीं आ रही तो मुझे संदेह हो रहा है। बनना है, क्या बनना है? सत्युग में ऊंच पद के अधिकारी, महाराजा महारानी बनना है। तो महाराजा महारानी बनने वालों का पुरुषार्थ कहो, उड़ान कहो, वो कैसी होगी? तीखी होगी, टुक टुक करके चलने वाली गाड़ी नहीं होगी, फास्ट होगी। तीव्र गति होगी। अब तीव्र गति, फास्ट, ऊंची उड़ान, वो हम प्राप्त करें उसके लिए क्या चाहिए। कभी कभी हम लोग किताब उठा के देखते हैं ना, तो अचानक कभी बहुत अच्छी बात मिल जाती है। बाबा को कभी कुछ बच्चे को कराना होता है तो वही पन्ना खुलवाता है। अभी मैं बनारस में थी तो मेरी आदत है कि मैं कुछ न कुछ पढ़ के फिर सोती हूं। मेरे को जरा सा भी समय मिलता है ना तो मैं कुछ न कुछ पढ़ती हूं। तो मैंने बहनों को कहा मुझे एक कोई भी किताब ला दो, कोई भी ला दो। वो ले आए, अव्यक्त वाणी की कोई किताब थी। और जैसे मैंने पन्ना खोला उसमें जो बात भूली हुई थी वो बाबा ने याद करा दी। और मुझे लगता है अगर मैं क्लास में अभी पूछूंगी ना आपको भी भूली हुई होगी, मुझे लगता है। कौन सी बात थी? दादी प्रकाशमणि ने जब शरीर छोड़ा, अव्यक्त हुई, तो दादी जी को ही बाबा ने टाइटल दिया अव्यक्त दादी। अव्यक्त बाबा, फिर उसके बाद किसी को भी टाइटल नहीं मिला अव्यक्त दादी का, अव्यक्त दादी। दादी इतना ऊंचा कैसे बनी? बाबा ने दादी की विशेषताएं बताई थी। पहली विशेषता, जिस दिन से पैदा हुई उस दिन से लेकर आज दिन तक सदा निर्विघ्न रही है। दूसरी विशेषता, निर्विकल्प रही है। तीसरी विशेषता, निर्माण रही है। चौथी विशेषता, निर्मल वाणी रही है। पांचवी विशेषता, सदा दुआओं की पात्र रही है। अब बताओ किसको याद था? कोई कोई। लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सब अपने आप को देखें, क्या मैं सदा अपने आप में निर्विघ्न रहती हूं? कभी कोई विघ्न में मैं रुकू नहीं? मानसिक विघ्न, आते हैं ना, आते हैं ना। अपने ही संस्कार बनते हैं। परंतु दादी जी, उनकी विशेषता ये रही, एक बार बाबा को पहचाना, दिल से बाबा कहा, फिनिश्ड। जो बाबा ने कहा, हां जी, अपनी बुद्धि नहीं चलाई। दादी बहुत इंटेलिजेंट थी, कभी बुद्धि चलाई नहीं। हां जी, विघ्न तब उत्पन्न होता है जब बात कुछ है और मैं कुछ सोचती हूं और कुछ कहना चाहती। मेरा संस्कार रुकावट बन जाता है। अभी तक हम कौन सा गीत गाते रहते हैं? बेंजी, पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं। पुराने संस्कार है, पुराने संस्कार है। गाते हैं गीत? गाते हैं? बोलो हां जी या ना जी। दादी ने ये नहीं किया, तुरंत निर्विघ्न रही। बाबा ने कहा, बच्चे ये ठीक नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक नहीं है, स्वीकार किया। मम्मा कहा करती थी कि जब कभी आप कहते हो ना पुराने संस्कार, तो कौन से हैं तुम्हारे पुराने संस्कार? द्वापर युग से लेकर के कलयुग वाले, क्या वो हैं तुम्हारे संस्कार? ये आपके संस्कार नहीं है, ये संस्कार किसके हैं? माया के हैं, रावण के हैं। आपके संस्कार तो दैवी संस्कार हैं। मम्मा कहती थी, जब पुराना शब्द कहो ना, तो पुराने थे पुराने थे पुराना ले जाओ पीछे, तो पुराने थे पुराने थे पुराने कौन से हो गए? दैवी हो गए ना, वो आपके संस्कार। जब आप पुराने अपने द्वापर युगी संस्कारों को महत्व देते हो, तो वो बैठ जाते हैं। महत्व नहीं देना है ना, तो निर्विघ्न रहना। नोट कर लो, नोट कर लो, सब लोग नोट कर लो, हमको ये बनना है, ऐसा रहना है। दूसरा, निर्विकल्प। देखो, बाबा को कितनी मुरली चलानी पड़ती है, बच्चे व्यर्थ संकल्प नहीं। यही कंप्लेन होती है ना हम लोगों की, संकल्प बहुत चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। कब तक व्यर्थ संकल्पों की फसल को अलाउ करना है? फसल है ना, पूरी फसल। एक बार चालू होता है ना, तो अपना बीज छोड़ के जाता है, फिर चलता है, फिर चलता है, फिर चलता है, फिर चलता व्यर्थ संकल्पों के कितनी फसलें काटी हैं। हर एक पूछे, अभी कंटिन्यू करने हैं व्यर्थ संकल्प। दादी को व्यर्थ संकल्प नहीं आता था, विकल्प नहीं आता था। विकल्प समझते हैं ना, अशुद्ध संकल्प। अभी अभी दादी के सामने कोई व्यक्ति आता है, बहुत भारी भूल करके आता है, उसको कहते हैं भई ये तुमने, दादी उसको शिक्षा दे रही है, अच्छी तरह से उसको बता रही है। थोड़ी देर के बाद वो चला जाता, दादी देखो फिर नॉर्मल हंसती खेलती दिखाई देती है। कदापि संकल्प अंदर बसने नहीं देती थी। अच्छा हो गई ना बात, अभी चलो आगे, वो तो पास्ट हो गया ना, खत्म हो गया, अभी चलो आगे। निर्विकल्प, तीसरा निर्माण, नम्रचित, बहुत नम्रचित थी, हल्की फुल्की लाइट, अकेली चल देती थी। बहुत वर्ष पहले की बात है कि दादी पांडव भवन मधुबन है ना, वहां ईशु दादी के ऑफिस के सामने खड़ी थी। एक गाड़ी आई, जीप आई, तो हमारे गेट पर उन दिनों में जो भाई रहते थे, पहरा देते थे, वो पुलिस की वर्दी पहन करके रहते थे, ड्रेस से होशियारी रहती है ना। तो उस भाई ने क्या किया, देखा ये गाड़ी आ रही है और गाड़ी अंदर सीधे प्रवेश कर रही है, उसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोक दी तो उस भाई को बहुत गुस्सा आ गया, तुम कौन होते हो गाड़ी रोकने वाले, तुमने पुलिस की वर्दी पहनी है, तुमको पता नहीं है किसकी गाड़ी है, गाड़ी कैसे रोकी तुमने। तो वो जो था ऑफिसर जीप से उतरा और उस भाई को खूब अच्छी तरह डांटने लगा। दादी वहां खड़े थे, मैं भी दादी के साथ खड़ी थी। दादी ने कहा ये क्या हो रहा है, आवाज आने लगी, ज्यादा दूर तो नहीं है ना, यहां से उतना भी नहीं था। तो दादी चली, उनके साथ मैं भी चली। दादी वहां जाके ऐसे हाथ जोड़ के पूछती क्या हो गया दादी, इस दादी नहीं बोला उसने, ये किसको खड़ा किया, जिसको इतना भी नहीं पता कि किसकी गाड़ी रोकनी चाहिए किसकी नहीं रोकनी चाहिए, इसको किसने खड़ा किया। दादी हाथ जोड़ के कहती है इससे गलती हो गई। वो बोला, दादी ने कहा, दादी के शब्द सुनो, ऐसे हाथ जोड़ के दादी कहती हैं कि इसके बिहाफ पर मैं आपसे माफी मांगती हूं, इससे भूल हो गई। तब मैंने उस ऑफिसर को बोला, मैंने कहा आप जानते हैं ये कौन है, ये संस्था की चीफ है। ऑफिसर छोटी आयु का था, शर्मिंदा हुआ, दादी के पांव पड़ गया। निर्माणता, ये मेरी आंखों देखी अनुभव की बात। आज हम लोग करेंगे ये, हम क्या कहते हैं, अच्छा इसने किया ना यही भुगते, अच्छा है इसको थोड़ी पड़ रही है, अच्छा है इसको मालूम पड़ रहा है। निर्माणता, ऐसा नम्र निर्माण स्वभाव क्या कर लेता है, निर्माण का कार्य कर लेता है। चौथी बात, निर्मल वाणी, हमारी वाणी में उतार चढ़ाव होता है, होता है हाँ, होता है ना, क्या समझता है अपने आप को, बहन जी इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है मैं 7 जन्म नहीं भूल सकता, और भी पता नहीं क्या क्या बोल देते, मैं तो नहीं बोल सकती। वाणी में निर्मलता, इतनी अच्छी वाणी हो, इतनी अच्छी वाणी जो सुकून दे, दादी जी की ऐसी वाणी थी, निर्मल। बिल्कुल निर्मल, इतने सरल रीत से इशारे में व्यक्ति को बताते थे, शुद्ध कल्याणकारी भाव से, कभी टोंट नहीं मारती थी। टोंट मारना समझते हैं ना, व्यंग, उपहास नहीं। निर्मल वाणी, आप लोगों में पता नहीं कितनों ने दादी को देखा या नहीं, दादी जब मुरली चलाती थी, मुरली सुनाती थी, बाबा की मुरली है, कभी मैं शब्द का उपयोग नहीं करती थी, बीच में कुछ दादी को कहना होता था तो भी मैं नहीं कहती थी, मैं कहती हूं, कभी मैं नहीं बोलती थी, दादी कहती है। अपने आप को इतना गुप्त कर लेती थी, इतना अपने आप को, मैंपन को समाप्त कर लेती थी, जो बाबा का दिया हुआ रोल दादी का है इसे बोलती थी, दादी कहती है। हम लोग कहते हैं मैं कहती हूं, मैं कह रही हूं, मैं जो बोलूंगी, दादी नहीं करती थी, अपने रोल को भी निमित्त भाव से प्ले करती थी। निर्मल वाणी, बात दुआओं की पात्र, आप सब जानते हैं जो काम दुआएं कर सकती हैं वो और कोई चीज नहीं कर सकती। दुआएं काबिलियत से मिलती हैं, दुआएं योग्यता से मिलती हैं, दुआएं पाने के लिए पात्र बनना होता है। कई बार लोग कहते हैं हमें दुआ दीजिएगा, उन्होंने तो कहा लेकिन मैं दुआ दूं या ना दूं ये मेरी मर्जी है ना, ठीक है ना, मेरी मर्जी है ना मैं दूं या ना दूं। दिल करेगा तो दूंगी, दिल नहीं करेगा, मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया होगा तो दुआएं निकलेंगी, सच बताओ नहीं निकलेंगी ना। अगर आपके साथ कोई ठीक व्यवहार नहीं करे, दुर्व्यवहार करे, आपके दिल से दुआएं निकलेंगी, हां जी है ना जी, ठंडा ठंडा जवाब है। सोचने की बात, कहा जाता है दुआएं कमाने की चीज है, दुआएं हमें कमानी होती हैं, दुआएं ऐसे ही नहीं मिलती हैं। किसी को आप दुआ देना पसंद करते हैं, ये इतना सेवा करता है, ये इतना अच्छा है, इतना लायक है, हम सब की दुआएं इसके प्रति, इतनी हिम्मत रखती है, इतना करती है, हमारी दुआएं इसके साथ है। भाई हम नहीं कर सकते, ये कर सकता है, हमारी दुआएं इसके साथ है, निकलता है ना। और कोई के लिए क्या कहेंगे, आप लोग गृहस्थी बैठे हो यहां पर, कभी कभी मैं ऑब्जर्व किया करती थी घर में, कोई बहू आएगी ना उसको खूब दुआएं देंगे, और दूसरी आएगी ना फट से मुंह बना करके थोड़ा सा बस छुट्टी, फर्क है ना। एक ने दिल जीता हुआ है तो आपके दिल से उसके लिए बहुत बहुत दुआएं निकल रही हैं, और कोई ने नहीं तो के लिए दुआएं निकलती नहीं, खजाना पता नहीं कहां लॉक हो जाता है। दादी ने अपने हर कर्म से दुआएं प्राप्त की, हम सबके दिल से दादी के लिए दुआएं निकलती। जब जीवन में कुछ भी काम में नहीं आता उस समय दुआएं काम में आती हैं। अब दुआएं कैसे जमा करें वो अलग बात है, वो अलग क्लास, कैसे जमा करें, लेकिन एक काम करें। मैं कैसे में नहीं जाऊंगी, अलग उसका फिर विस्तार हो जाएगा, कैसे में नहीं जाऊंगी इतना जरूर कहूंगी, और कुछ हम करें या न करें मुझे सेवा करनी आती हो या ना आती हो, वाणी से भाषण देना आता हो या ना आता हो, मनसा सेवा करनी आती हो या ना आती हो, शरीर भी मेरा ठीक ना हो, मैं तन से भी सेवा मानो नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी दुआएं कमा सकती हूं, वाणी से तो कर सकते हैं। एक ही काम करें, कुछ नहीं आता मान लिया, माताएं कहती हैं बहनों की तरह हमें नहीं आता ये सब कुछ, भाई भी कभी कहते हम इतना नहीं कर सकते, ओके कोई बात नहीं, लेकिन दुआएं मुझे कमानी है, दुआएं जमा करनी है, ये तो हम कर सकते हैं। कर सकते हैं, अपना यज्ञ है। बड़ी दादी की आपको मैं मिसाल सुनाती हूं, मैंने सुनी है, देखी नहीं थी, सुनी है, लेकिन मैं उस दृश्य को इमर्ज कर सकती हूं। बड़ी दादी अपने कॉटेज में थे तो दादी को अच्छा लगता था, सोफा पे बैठती थी, सामने भाई बहने होते थे, दादी हाथ हिलाती थी, खुश होती थी। कभी कभी बहने जो थी पर्दे लगा देती थी, पर्दे लगा दिए, बाहर कई खड़े थे, पर्दे लगा के चले गए। जब वो जो अंदर चले गए ना, तो दादी उठी, उठ के पर्दे को ऐसा किया और जितने खड़े थे उनको बुला के थे, आओ आओ। उसमें माताएं थी, अब माताओं का दिल क्या होता है, दादी को हम देख रहे हैं तो दादी के हाथ में कुछ दे दें, दादी कहती पल्लू से ऐसे करके कुछ देना चाहती हो, हाँ मैं कहती आ जाओ आ जाओ, सबको बुला ली। बहने आई, देखा हम तो पर्दे लगा के गए, ये क्या हो रहा है, लेकिन कितने दिल से दादी ने उन आत्माओं को जो संतुष्ट किया, दुआएं मिली ना, हमने दुआएं जमा करनी है। बस एक ही धुन हम लगा लें, मेरे हिसाब से ये सबसे सहज पुरुषार्थ की विधि है। आसानी से हमारा योग लगेगा, आसानी से सारा परिवार अपना लगेगा, कोई कठिनाई नहीं होगी, खुशी आपे ही मिलेगी। आप अगर किसी एक बुढ़िया माता को थोड़ा सा रास्ता पार करा देते हो, खुशी मिलती है आपको, मिलती है ना? किसी प्यासे को पानी पिला देते हो, खुशी मिलती है ना? जरूरत के वक्त किसी की मदद कर देते हो, खुशी मिलती है ना? वो खुशी आप कहां से लाओगे? वो खुशी ना तो आपको धन से मिल सकती है, ना आपको डिग्रियों से मिल सकती है, जमा कर लो जितनी मर्जी डिग्री जमा करनी है, वो खुशी जो संगम की हमारी सौगात है, वो खुशी केवल केवल दिल की दुआओं से मिल सकती है। हम कुछ भी नहीं जानते हों, आज जो ये क्लास रहा मैं रिवाइज करती हूं। हम मधुबन में आए हैं, मधुबन से अपने लिए कुछ नवीनता हमें लेकर जानी। हम जब मधुबन में आते हैं हम अपने आप से पूछें, वहां से चलने से पहले हम अपने आप को लक्ष्य दें, जहां से भी आप सब आए हो वहां से चलने से पूर्व अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें कि मैं मधुबन जा रहा हूं, मधुबन जा रही हूं, इस वर्ष किस लक्ष्य से जा रही हूं। बाबा मिलन, बाबा मिलन, बाबा मिलन तो किस रूप से मैं भगवान से मिलूं? भगवान साधारण नहीं है। किस रूप से मिलूंगी? वहां से ही अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और जब यहां आए उस अपने लक्ष्य को तपाना चाहिए, उस लक्ष्य के प्रति तपस्या करनी चाहिए। हम तीर्थ स्थान पर आए, तीर्थ स्थान पर कुछ विशेष प्राप्ति के लिए आए। मैंने मधुबन से इस बार के विजिट से क्या लिया, क्या नवीनता लेकर के मैं वापस जा रही हूं? ऐसा न हो जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट जाए, बाबा से मिल लिए। क्या मेरा परिवर्तन स्वरूप रहा? उन्नति के मैंने कितने कदम लिए? पुरुषार्थ की गति में कितनी तीक्ष्णता आई? ये सब हमें हिसाब रखना होगा। ठीक है, मधुबन आना भाग्य की निशानी है। आप सभी इतने भाग्यशाली, भाग्य की खान में पधारे हो, तो कौन सा भाग्य अपने साथ समेट करके ले जा रहे हो, ये चेक करिए। ठीक है, ओके, ओम शांति। जब तक दादियां हैं हम लोग योग करेंगे।